मिली राधा। बोलो कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा, कृष्णा प्रिया श्यामा लाडली राधा, भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, कृपा मई राधे, दया मई राधे, कृपा मई राधे, करुणा मई राधे, दया मई राधे, भजले राधे जय श्री राधे, भजले राधे जय श्री राधे, करुणा प्रेम दया मई राधे, करुणा राधे, कृपा मई राधे, कृपा मई राधे, दया मई राधे, दया मई राधे, हाँ भजले राधे जय श्री राधे, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे गोपाल हे राधे,
हरे राम 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 राम,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Jai Sri Radhe Shyam. तो अभी हम नंदगांव आए हैं. आपने नंद भवन में जाकर श्री कृष्ण बलराम यशोदा माई नंद बाबा राधा रानी धन सुखा मन सुखा इनका दर्शन किया ना सबका. सो बाबा के पास जो खड़े हैं वो बलराम जी महाराज, मैया के पास जो खड़े हैं वो कन्हैया जी हैं, और ससुराल में होने की वजह से राधा रानी बाजू में खड़ी है. हर मंदिर में साथ में खड़ी रहती है, ससुराल के भाव से संकोच से अदब से बाजू में खड़ी है. और हमारे दाहिनी ओर दो सखा हैं, धन सुखा और मन सुखा, यानी मधुमंगल और श्रीदामा. मधुमंगल सांदीपनी के पुत्र ब्राह्मण थे, वो बड़े पेट वाले थे, और श्रीदामा राधा रानी के भाई थे. दोनों के बड़े प्रिय सखा हैं भगवान के. और नंदगांव जो है वो वात्सल्य रस और साख्य रस का भूमि है प्रधानता से, बाकी सब तो भी है उसमें, लेकिन प्रधान रूप में मित्रता का लीला जो है, ग्वाल बालों के संग गौचारण, माखन चोरी, गुल्ली डंडा, गोटी, पतंग, ये सारे जो खेल हैं वो नंदगांव की लीला है. और माँ और पिताजी का प्यार वात्सल्य, हाँ, वो भी नंदगांव की खासियत है. नंदगांव यहाँ पर नंद बाबा के चार भाई थे, वहाँ पर विश्वानंद बाबा के आठ भाई थे. नंद बाबा के चार भाई हैं, हाँ, उपनंद, अभिनंद, फिर स्वयं नंद, फिर सुनंद और नंदन चाचा, ऐसे पांच भाई हैं टोटल. तो उपनंद बाबा जो थे सबसे बड़े थे वो, और इन सबके पिताजी का नाम परजन्य महाराज है. परजन्य महाराज ने नंदगांव में तपस्या किया है, यहाँ पर उनकी तपस्थली है ये. उन्होंने महावन में उनका निवास था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है. तो महावन में उन्होंने तपस्या किया है तो महावन में उनका राज्य था. तो परजन्य बाबा को पांच पुत्र हुए, उसमें उन्होंने उपनंद बाबा को राजा बना दिया. लेकिन नंद बाबा सबसे गुणों में श्रेष्ठ थे, और बड़े भाई के राज्य प्राप्त करने के बाद भी ज्येष्ठ भ्राता ने बड़े प्रेम से अपने मझले भैया को राज्य दे दिया. ऐसा कभी होता है क्या दुनिया में? अरे हमारे हक में ना होते हुए हम छीन लेते दूसरे का हक, जो हम उसके योग्य नहीं है, फिर भी दूसरों का हक छीन कर राजा बन जाते हैं पॉलिटिकली. जो हमारे योग्य नहीं है फिर भी हम लोग उसको छीन लेते हैं. यहाँ पर आप उसके योग्य हो, आपको बकायदा दिया गया है राज्य, लेकिन प्रेम की वजह से आप अपने छोटे भाई को दे देते हो. छोटे भाई ने संकोच किया, फिर भी उनको कहा कि आप सबसे श्रेष्ठ हो, सद्गुणों में आप सबसे श्रेष्ठ हो, इसलिए उन्होंने उनको राजा बनाया. ये हमारा आध्यात्मिक इतिहास है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है. त्याग, प्रेम के लिए त्याग, और जो सबसे योग्य है उसके लिए त्याग बहुत जरूरी. तो इन चार भाइयों को दो दो पुत्र हुए, और वो भगवान के अष्ट सखाएं. वहां पर एक भाई को एक कन्या हुई, आठ कन्याएं हुई, तो अष्ट सखियां बन गई भगवान की, राधा रानी की. यहाँ पर जो दो दो बालक हुए हैं वो कृष्ण के परम सखा हैं. वो कृष्ण के बिना एक दिन एक क्षण भी रह नहीं सकते. मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ, कितना प्रेम था उनको भगवान के ऊपर. सीतामा जी को, सीतामा जी राधा रानी के भाई है ना, जब राधा जी का जन्म हुआ था तो नारद मुनि ढूंढते ढूंढते आए थे कि कहाँ जन्म हो गया है. तो वहाँ पर वो पहले पूछते हैं कि माता जी सुन रहे हैं ना आप, राधे राधे, हाँ नंद भवन की एक ही कथा है ये. तो नंद नारद मुनि ढूंढते ढूंढते आए थे राधा के घर पे, और राधा रानी ने कहा था कि मैं जब आऊंगी जन्म लूंगी तो आपके बिना किसी को नहीं देखूंगी, आपके बिना किसी की आवाज़ नहीं सुनूंगी, आपके बिना कोई चीज़ सुनूंगी नहीं मैं, आप जब होंगे तभी मैं दर्शन आँख खोलूंगी मेरे. तो फिर जन्म हो गया तो फिर वो नजर आ रही है कि वो अंधी है, गूंगी भी है, बहरी भी है. नारद मुनि पूछते हैं कोई कन्या का जन्म हुआ है इधर, तो वो ना कर देते हैं उनको. उनको लगता है बड़ा अशुभ है, हमारी सुंदर कन्या है लेकिन वो अंधी गूंगी बहरी भी है, कैसे बताएं, कैसे उत्सव मनाएं, कैसे डिक्लेयर करें उसको। तो नारद मुनि जी पूछ रहे हैं कि कोई कन्या का जन्म हुआ है? बोले तो नहीं। बोलते तो और कोई बालक है आपके पास? तो बोले हाँ, सीता माँ को सामने कर लेते, ये हमारा बालक है, ये हमारा पुत्र है। तो बोलते बालक नहीं, मेरे पास जो गणित है वो कन्या का है, जो मैंने चार्ट बनाया है मेरे पंचांग के अनुसार यहाँ पर कन्या का जन्म होना चाहिए, तो कन्या होनी चाहिए। आप मना कर रहे हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा उनको बुलाते हैं, माता पिता क्या डिस्कस करते हैं, अरे ये तो संत महात्मा है, इनकी कृपा से क्या नहीं होता है, वो अंधी बच्ची भी ठीक हो सकती है। तो दोबारा बुलाओ उनको, बोलते बुलाओ बुलाओ, दोबारा बुलाते हैं। तब कहते हैं नहीं, हमारे पास कन्या हुई है, हम जरा संकोच में थे, अभी आप आइए। वो बेचारी बोलती नहीं, कुछ कुछ सुनती नहीं है, तो हमको जरा दुख था उस बारे में। बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आप दर्शन कराओ। दर्शन करते, दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं उत्सव मनाओ बड़ा जोरदार से। तो वो संभाषण में जब नारद मुनि वहाँ गए थे तो श्रीदामा को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तुम कृष्ण के सबसे प्रिय सखा बनोगे। तो वो है श्रीदामा। फिर अदरा नहीं कि यहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया गया, उसमें कृष्ण बलराम आए, तो कृष्ण के आते ही, कृष्ण के शरीर के गंध को सूंघते ही राधा रानी ने आंखें खोल दी। बाद में श्री कृष्ण ने उनको स्पर्श भी किया है, पल्ले में खड़े होकर रेंगते हुए पल्ले को पकड़ के खड़े हो गए और राधा रानी को हाथ लगाया। उसके पहले जब कमरे में आए तो उनके शरीर के गंध से राधा रानी प्रफुल्लित हो गई और आंखें खोल दी उन्होंने। फिर आगे की लीलाए तो ये सुदामा जो है बड़े प्रिय सखा है भगवान के। तो सुदामा जी को दिन में गौचारण करते हैं, गाय चराते हैं, दिन भर साथ रहते तो आनंद है बहुत, लेकिन जैसे शाम होती है इनको दुख होना शुरू होता है कि भी छोड़ के जाना होगा, कल सवेरे तक इंतज़ार करना होगा। तो ये बहुत रात भर रोते हैं कृष्ण की याद में। तो एक दिन कृष्ण को बोलते हैं कि मैं रह नहीं पाता आपसे, मैं मर जाऊँगा एक दिन आपके विरह में, मैं रात भर आपकी याद में तड़पता हूँ, कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो कन्हैया बोलते क्या करना चाहिए? तो सीतामा बोलते कि एक काम करो, कम से कम आपका एक चित्रपट बना के मुझे दे दो। अभी तो कैमरा फोटो निकाल रहे हैं हमारे प्रभु जी, 50 फोटो निकालते हैं, चाहे जितना फोटो ले सकते हैं अलग अलग मुद्रा में। उस समय तो वो बोल रहे चित्रपट निकालो मेरा, और सीतामा बोलते हमको दे दो, तो कम से कम रात भर देखते रहेंगे तो थोड़ा विरह कम होगा, थोड़ा दुख कम होगा, नींद तो आएगी नहीं, कम से कम आपका चेहरा देखते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो कन्हैया जी वहाँ को माँ को बात करते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा बेचारा दुखी रहता है, रात भर जगता है वो मेरे लिए, तो वो कह रहा है कि चित्रपट बना के तो मेरा। तो मैया भी एकदम लाइट मूड में रहती है, मैया कहती है अरे उसमें क्या बड़ी बात है, एक कागज़ ले लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट। तो कन्हैया रोता है जोर से, मैया हम इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, और मैं तो इतना बुरा दिखता हूँ क्या, क्या आप कह रहे दो का चार काले ब्रश मार दो, हो गया मेरा चित्रपट। तो मैया समझते कि गंभीर मामला है, कोई मजाक का मामला नहीं है। तो बोले ठीक, कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करती हूँ। तो वो चित्रा सखी को याद करती है, चित्रा सखी अष्ट सखी में से एक सखी है भगवान की, राधा रानी की। वो कई कलाओं में निपुण है, चित्रा सखी चिकित्सापुर उनका गाँव है, चिकसोली कहते हैं उसको, और चित्रा सखी ये है ना पामिस्ट्री, बहुत एक्सपर्ट है उसके अंदर, ज्योतिष में भी बहुत एक्सपर्ट है। उसके पिताजी का नाम धर्म भानु है और वो भी बहुत विद्वान और शास्त्रों में पारंगत थे, ये भी बहुत पारंगत, और ख़ास करके हस्त सामुद्रिक पामिस्ट्री और भविष्य एस्ट्रोलॉजी, और इसके अंदर और एक गुण है, वो सारे जितने भी जीव है दुनिया में सबकी भाषा जानती है, वो पंछियों की, पक्षियों की, प्राणियों की, बोलो जितने जीव है उस सबसी भाषा बात करती है, सब संवाद कर सकती है, वो कला है उसके अंदर, और चित्रपट में भी एक्सपर्ट है बहुत चित्रा सकी। तो उसको बुलावा जाता है, तो बड़े भाग्य से भाग भाग के आती है, अरे यशोदा मैया ने मुझे बुलाया है, इतना भाग्य है मेरा, समझो आपको गोलोकनाथ महाराज ने बुलाया है तो आपको लगे वाह क्या भाग्य खुल गया मुझे, आज गुरु महाराज भी बुला रहे हैं, व्यक्तिगत संग देने वाले हैं, सर यशोदा मैया मुझे बुला रही है, कन्हैया की माता भाग के आई हो, मैया क्या सेवा करूं? तो कहते हैं कि कान्हा का चित्रपट निकालना है, बोला जरूर निकालूंगी। नहीं प्रफुल्लित हो गई, इतने आनंदी हो गई, तुरंत भाग के गई, अपने पूरा कलर वलर सब लेके आई और चित्रपट बनाने के भाव में बैठी और मन में उसके एक छवि उसको फिक्स करनी थी मन में और वो निकालनी थी उसको। जैसे ही बैठी मन में विचार करने के लिए तो मन में हजारों छवियां भगवान की आई, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी मजाक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सुस्त बैठे हैं, कभी उत्साह में बैठे हैं, ऐसे हजारों छवियां ठाकुर जी के एक साथ पैदा हो गई। तो बोले अभी किस पर ध्यान रखूं और कौन सा निकालूं। एक को ध्यान करने के बाद दूसरी छवि मन में आ जाती थी, अरे बाप रे इतनी अच्छी सेवा मिली और सेवा ही नहीं कर पा रही हूं मैं, क्योंकि कोई छवि मन में आने के पहले, मन लगाने के पहले और एक छवि आ जाती है मन में। तो बोले गड़बड़ हो गया, अभी क्या करें, क्यों ऐसा हो गया। तो विचार करती है मन में कि मैंने ये सेवा कृष्ण की करने के पहले राधा रानी की कृपा नहीं लिया, उनका आशीर्वाद नहीं लिया मैंने, ये गलती है मेरी। श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए राधा का आशीर्वाद चाहिए, उसके बिना कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं। तो राधा रानी के पास गई है वो और क्षमा मांगी है, फिर उन्होंने आशीर्वाद मांगा है कि आप कृपा करो तो मैं ये सेवा कर सकती हूँ, तो मिली मिली सेवा मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो राधा रानी फिर उनको आशीर्वाद देती है, फिर उनके मन में एक ही छवि फिट हो जाती है, मन में आकर स्थिर हो जाती है मन के पटल में, फिर वो चित्रपट निकालती है कृष्ण भगवान का और वो बनाकर नंद भवन में आके माँ को दे देती है, माँ को, माँ उसको कृष्ण को देती है, कृष्ण उसको सीधा माँ को देती है। फिर उसके बाद कुछ कुछ उसका विरह कम हो जाता है। ऐसे सखाए हैं, भगवान के बिना एक मिनट रह सकते नहीं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनको दृष्टि से ओझल नहीं होने देते हैं। भगवान उठकर मुरली बजाते हैं सुबह, तो मुरली के तान उनका अलार्म है, भगवान भी कैसे हैं, सबसे पहले उठते हैं और कुछ भी करने के पहले मुरली बजा देते हैं। जैसे मुरली बजती है सब सखा उठ जाते हैं और धड़ाधड़ तैयार हो जाते हैं, अरे उठो रे स्कूल बस आ गई है, टाइम हो गया, घंटी बज गई, रे उठो टीचर आ रही है, डंडा लेके उठो रे उठो, ऐसा कुछ नहीं है। जरा सी मुरली बज गई तो झट से उठ गए, क्यों क्यों उठते ऐसे, ईगर है वो लोग, लवल्यम, लवल्यम का मतलब क्या है, ईगरनेस, इतने ईगर हैं वो भगवान को मिलने के लिए। हाँ, उनको धक्का नहीं मारना पड़ता है कि स्कूल जाओ ये करो, भगवान से उतना प्रेम है तो इतना उत्सुक है वो, लवल्यम। रूप गोस्वामी का मंदिर है ये, यहाँ पर रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति और प्रेम प्राप्त करने के लिए ये कीमत है, मूल्य है इसका, ये लौल्य। ईगरनेस इज द प्राइस फॉर डिवोशन टू गॉड। जब हम ईगर हो जाते हैं ना, ईगर उत्सुक हो जाते हैं, जैसे भोजन कभी अच्छा लगता है जब बढ़िया भूख लग रही हो, तो दाल चावल भी लगता है कि वाह क्या स्वाद है उसके अंदर, स्वाद दाल चावल में है, लेकिन स्वाद तब आता है जब आप भूखे रहते हो और पेट भर के खाना खिलाए आपको, उसके बाद दुनिया से सबसे महीन चीज आके दी आपको, तो भी आपको लगे यार क्या है, मजा नहीं आया उसके। तो भूख जो है ना वो अन्न के स्वाद का रहस्य है, अन्न स्वादिष्ट है नो डाउट, लेकिन उसमें स्वाद आना इसका रहस्य जो है भूख में आपके, जब आपको भूख लगेगी तो आपको स्वाद आएगा उसका, और उस भूख लगेगी तो स्वाद आएगा और पचन भी अच्छा होगा, होगा कि नहीं, आगे का काम भी अच्छा होगा, अगले दिन का मॉर्निंग का काम भी अच्छा होगा, अगर आज भूख से खाना खाया तो, और खाली पेट खाना खाया तो सब बीमारियां हो जाती हैं। हरे खाली पेट नहीं मतलब बिना भूख के खाना खाएंगे तो वो सबसे बीमारियों का कारण क्या है, बिना जरूरत के और बिना भूख के खाना। मुझे ब्रजवासियों ने बताया था ये, मैं खुद डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे बताया था कभी भी बिना भूख के खाना नहीं खाना, जब भूख लगेगी तब खाना, कितना बड़ा प्रिंसिपल है। देखो वही प्रिंसिपल भक्ति में है, जब लवल्य होता है ना तो भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, जब शुद्ध चरित्र उत्पन्न होता है किसी का, पवित्र चरित्र उत्पन्न होता है तो भगवान की अनुभूति होती है, जब भगवान के ऊपर मन एकाग्र होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है, जब चित्त भौतिक दुनिया में भटा हुआ था भटा रहता है तो भौतिक दुनिया की ही चीजें प्राप्त हो जाती है, तो चित्त भगवान में एकाग्र हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्या चाहिए आपको वो मिल जाता है दुनिया में। तो फिर ये बात कहां से निकली, चित्रपट बनाया और सुदामा को दिया, सुदामा ने कुछ कुछ उसका विरह शांत हो गया, तो ऐसे ग्वाल बाल झट से उठ जाते हैं और भगवान के पास श्रृंगार करके आ जाते हैं, फिर भगवान भी झट से तैयार हो जाते हैं और सब लोग क्या क्या सोच रहे हैं, वे गाय चराने कन्हैया के संग जाएंगे, एकांत में लीला करेंगे उनसे, गाइस इस वन में जाएंगे, उस वन में जाएंगे, जमुना जी में कूदेंगे, शाखा से कूदेंगे, शाखा के ऊपर चलेंगे, यहां से वहां चलेंगे, नीचे गाय चलेगी। एक उत एक मधुमंगल उत श्री दामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजा धीरे धीरे। एक मधुमंगल उत श्री दामा, एक बाजू में मधुमंगल, एक में श्री दामा, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, से गौचारण की लीला है। नंदगांव में ऐसे अनेक पेड़ थे उस समय जिसकी ब्रांच मथुरा पहुंचती थी, जिसकी ब्रांच काममोहन पहुंचती थी, जिसकी ब्रांच गोवर्धन पहुंचती थी। आप शास्त्र पढ़िए, आपको वर्णन मिलेगा। वो नंदगांव में पेड़ पे चढ़ते थे, नीचे गाय चल रही है, ऊपर शाखा पे ये चल रहे हैं और गाय हाँक रहे हैं, चलो आज गोवर्धन जाना है तो गोवर्धन वाली शाखा में चढ़ना है। आप कैसे बोलते हैं, आपको कहाँ जाना है, चलो आपको दिल्ली जाना है, हाईवे पकड़ो, हाईवे से चलना है, ये दिल्ली जाती है। वैसे शाखा जा रही है नंद गोवर्धन, तो गोवर्धन की शाखा में चढ़ते हैं और गाय नीचे चल रही है, गाय को हैट हैट करके हाँक रहे हैं, वो चल रही है ऊपर से ही चल रहे हैं। जब चाहे जमुना बीच में आते, जमुना में कूदेंगे, स्नान करके वापस पेड़ पर चढ़ जाएंगे, वापस आगे चलेंगे। ऐसा नंदगांव का आनंद है। और पहले जब बचपन में थे नंदगांव में, तो वत्सपाल लीला करते थे, मतलब क्या, बछड़ों को उनको दिया था, वो बच्चे थे तो उनको बच्चे गाय को दिया था, बछिया और बछड़ा, वो उनको चराते थे। वो उसका क्या नियम था कि नंद भवन में आप लोग कहे ना ऊपर, उसके ऊपर भी और एक स्थान है झरोखा, ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, वहां पर जाकर खड़े हो जाएगी मैया और उसके नजर में दिखना चाहिए कन्हैया कहां पर बछड़े चला रहे हैं, उधर तक जाने का परमिशन है, उसके आगे नहीं जाने का। जहां तक मैया को दिखाई पड़ेगा, उसकी नजर जहां तक पहुंचेगी, वो उसका बॉर्डर है, उसके आगे नहीं जाना है। ये वत्सपाल लीला का नियम है। तो वत्सपाल लीला में उन्होंने बकासुर को मारा है, वो खदीर बन गए हैं, वहां पर उन्होंने आनंद लिया है। बहुत सारी लीला है बचपन की, गुल्ली डंडा खेलते थे, गेंद खेलते थे, उसी गेंद में उन्होंने, गेंद खेलते खेलते गिर गया ना गेंद जमुना जी में, तो बोला अभी मुझे गेंद चाहिए। हाँ ऐसे लीला सब यहाँ पर है। और एक नियम है बच्चा बच्चा लीला की, कि दोपहर में लौट के आना है, हाफ डे। बच्चों का स्कूल कैसा होता है, हाफ डे। प्राइमरी में कैसा होता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स। सेकेंडरी में जाएगा तो 9 बजे जाएगा, तो शाम को 5 बजे लौट के आएगा। तो प्राइमरी भगवान में जब थे तो गाय चराना सुबह से दोपहर तक, दोपहर में भोजन करना बाबा के साथ घर पे। तो ये बच्चों ने बहुत जिद किया कि हमको बड़ी गाय चाहिए। अभी गाय बैल बात करते हैं भगवान से, बोलते कन्हैया आप हमारे बच्चों को लेके जाते हो, हमको भी लेके जाया करो ना, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। तो कहते हैं क्या करें, बाबा नहीं भेजते हैं। तो एक दिन भगवान ने क्या किया, सब ग्वाल बालों को ना घर से चुराया, बहुत सारा मिठाई चुराया, चोर तो है ना वो, चोर अग्रगण्यम। सब चोरों में सबसे श्रेष्ठ चोर है वो। तो बहुत सारी मिठाई चुराई और सब ग्वाल वालों को खिलाई, वो सब संतुष्ट हो गए। तो बोले मैंने फ्री में नहीं खिलाया आपको, मेरा काम है आपके पास, आप लोग अभी सब लोग वत्स पालो, हम लोग बच्चा चलाते हैं, अभी आपका काम है कि घर में जाके बाबा मैया को बनाना है कि अभी कल से हमको गोपाल बनना है, मतलब क्या, बड़ी गाय भी देना है हमको, और वो हाफ डे का बिजनेस बोर हो गया, अभी हमको हाफ डे नहीं चाहिए, हमको फुल डे काम करना है। और ये कैसे है ना, ऊपर से मैया देखती रहती है, उनकी नज़र में रहते हैं हम लोग, उनकी निगरानी में रहते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है कुछ, समझे ना, सबका अपना अपना स्पेस चाहिए। तो बोलते कि अभी आप चाहो मनाओ, अपने बाबा को मनाओ और मेरी मैया बाबा को मनाओ। वो बीच में चिढ़ाते भी थे उसको, अरे तुम तो अभी तक बालक हो, तुम पे कहाँ विश्वास है मैया बाबा को, तुम पे तो विश्वास ही नहीं, इसलिए अभी तुमको बछड़े ही दे रहे हैं, अगर विश्वास होता तो बड़ी गाय दे चुके होते। इसलिए कन्हैया को बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। फिर गाय भी बोलती है हमको ले चलो। तो गाय ना बड़े बाबाओं को बताते हैं कि हमको कब भेजेंगे कृष्ण के साथ, कृष्ण भी बोलते रहते हैं हमको बड़े गाय का भार दे दो। काफ़ी दिन बात चलती रहती है। फिर वो एक दिन नंद बाबा गर्ग मुनि से मुहूर्त निकालते हैं, तो वो कहते हैं कि अष्टमी का दिन जो है कार्तिक का बहुत बढ़िया दिन है, उस दिन गाय को देना चाहिए। सप्तमी के दिन जंगल में भगवान को चिढ़ाया जा रहा है, सच्चिप्राण प्रभु भगवान को चिढ़ाया जा रहा है कि तुम तो कन्हैया, तुम तो बिल्कुल योग्य नहीं हो। तो कन्हैया बहुत रोता है वो दिन, एकदम डिप्रेस हो जाता है। अरे मैया बाबा को मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं बड़े गाय को चला सकता हूँ, मैया बाबा को विश्वास नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं विश्वास नहीं है। तो बहुत रोता है वो दिन ना, रोके रोके इतना डिप्रेस होता है। तो जब लौट के आता है, ना स्नान करता है, ना मक्खन खाता है, ना लोरी सुनता है, ना भोजन करता है, सीधे उल्टे मुंह करके सो जाता है। और उस दिन घर में डिस्कशन हो गया है, दोपहर को सप्तमी में जब ये बाहर चिढ़ा रहे हैं बच्चे, घर में चर्चा हो रही है कि अभी तो लाला को देना चाहिए बड़ी गाय। तो गर्ग मुनि का बुला के बोलता है, अरे कल का ही मुहूर्त है, कल ही दे दो। तो मैया बाबा वेट कर रहे हैं कि अभी वो गुड न्यूज देना है, लेकिन ये तो नाराज होकर सो गया, अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ना लोरी सुना, ना मक्खन खाया, ना कुछ नहीं किया। सुबह भी जब अभी उठाने का समय आता तो मैया लोरी गाती है, लोरी गाया तो क्या, इस कान में गाया तो वो भी सुनता नहीं है, उस कान में गाया तो भी सुनता नहीं है, क्योंकि जगा हुआ है लेकिन उठना नहीं है, नाराज है ना। अभी जो सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हो, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। इट इज सेड इन इंग्लिश ना, यू कैन वेक अप अ स्लीपिंग सोल बट यू कांट वेक अप अ प्रिटेंडिंग सोल। तो ये तो जगे हुए हैं, नाराज हैं, इसलिए वो मैया लोरी गा रही है लेकिन सुनते नहीं है वो। नंद बाबा से पूछते क्या किया जाए, अरे हमने मुहूर्त निकाला हुआ है, उसको गैया देनी है, कैसे करना है अभी। तो बोलते कान में जाके बोलो उसको कि तुमको बड़ी गैया देना है आज। सब खड़ी है तैयार होके, और बीच में क्या होता है, मुरली के अलार्म नहीं बजी, हाँ तो एक अलार्म अपने आप उठ गए, अरे अलार्म कैसे नहीं बजा। अपने आप उठ के तैयार हो गए, उनको खबर मिल चुकी थी कि बड़ी गाय देना है। वो तो नाराज होकर घर पर नहीं गए थे, ये नाराज होकर गए थे, तो वो तो अच्छी तरह गए थे। तो बाबा ने उन सबके बताया कि आपको बड़ी गाय का जिन जिम्मेदारी देना है कल से। सब लोग झट से तैयार होकर घर पहुंच गए नंद भवन में, और तभी भी ये सो रहे। फिर कान में बोलते हैं, अरे कन्हैया आज बड़ी गाय का तुमको भार देना है, सौंप देना है जिम्मेदारियां। झट से उठ जाते हैं, एकदम एक्सप्रेस में तैयार हो जाते हैं, एकदम फास्ट। और फिर उनको सजा कर धजा कर लेके आते बाहर, तो सब ब्राह्मण लोग आते हैं, वो मंत्र जपते हैं, यज्ञ करते हैं। उस दिन इनके हाथ से सब गायों की पूजा करवाते हैं, इनको अच्छी तरह सजा कर लेके आते, श्रृंगार करके। और बाद में सबसे आखिर में वो था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, लैंप लाइटिंग ऐसा होता है, वो सीनियर नर्स जूनियर नर्स को लैंप देती है हाथ में, जला कर उसको लाइट करके देती है कि ये मेरा जो ब्रीद है, ये मेरा जो मिशन है वो आपको मैं सौंप रही हूँ, है ना। नंद बाबा अपना जो गाय चलाने का मिशन है, उनका जीवन का ब्रीद है ना गौचारण, उसकी जो क्या कहते हैं सिंबल, उसका जो व्हाट डू कॉल बैटन, क्या कहते हैं उसको, डंडा गाय चराने का, लकुटी, रत्नों से भरा हुआ लकुटी है वो समारंभ पूर्वक मंत्रों के साथ नंद बाबा कृष्ण भगवान को सौंप देते हैं कि आज से ये पीढ़ी जात कार्य जो है वो हम आपको सौंप रहे हैं। और फिर सब गायों को घंटी पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, भगवान के हाथ से गाय के चरणों की पूजा करते हैं और गाय चराना आरंभ होता है। अभी मैया कैसी है, चिंता है ना उसको कि अभी तो ऊपर जाके देखने लायक था ये, अभी तो दूर जाएगा, तो उसको सारा चिंता हो रही है अभी कैसे होगा। तो वो साथ साथ चल रही है ना, समझे, आपको गुल्ली डंडा खेलना है। तो मैया भी आएगी तो बोले, मैया तुम जाओ ना, हम खेलेंगे ना। नहीं नहीं मुझे देखना है। नहीं नहीं मैया आप मत देखो, हमको खेलने दो। वैसे गौ चराने का है ना, उनको दूर जाने का मन है आज, तो ये साथ में जा रही है। आखिर में कृष्ण बोलते हैं, मैया अभी जाओ ना घर, आप जाओ, हमको जाने दो अपने अपना। तो उनको प्राइवेट लीला करना है ना उधर, जाते हैं। तो आज मैंने सुबह पढ़ा था, सुबह उठकर, कि सबसे पहले दिन वो गौचारण का बहाना क्या था उनका, कि गौचारण के बहाने बरसाना जाएंगे और राधा रानी का दर्शन करेंगे। आचार्य अगर बताते हैं कि ये बड़ी गाय का जो बहाना था वो किसके लिए था, कि नज़र से दूर जाने का प्लान था उनका। क्योंकि नियम का बताया ना आपको मैंने, कि कहीं भी किसी भी समय चढ़ के देखेंगे तो दिखना चाहिए क्या कर रहा है, सुरक्षित तो है, तो उसमें छुप छुप के मिलना कैसे होगा, क्योंकि उधर लगाया ना सीसीटीवी नंद भवन पे सबसे ऊपर देख रहा है वो क्या कर रहे हो। तो फिर वो दिन संकेत वन गए वो, और संकेत वन गए और राधा रानी का दर्शन किया दूर से, और वहीं से आंखों से अश्रु आने लगे उनके प्रेम के। तो ग्वाल बाल पूछ रहे, अरे कन्हैया क्या हो गया तेरे को, इतना क्यों बावड़ा हैगा तू? बावड़ा मतलब मालूम है ना, सब पागल सा क्यों हो गया? वो अभी तो गाय चराना शुरू भी नहीं किया, इतना तेरे को क्या हो गया है? तेरे करंट अलग अलग पड़ रहे हैं, तेरे कदम कहाँ गिर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बता दे क्या होगा तेरे को, तो क्या रोग होगा तो बता दो। तो बोलता है कुछ नहीं रोग हो गया, ठीक हूँ मैं। तो आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारा रोग क्या है, हम भी देख रहे हैं, तुम जहां देख रहे हो हम भी देख रहे हैं वहां पर, हमको पता है तुम कहां देख रहे हो। तो फिर बोलते हैं कि अभी जान ही गए हो तो उसका इलाज भी करो। तो कैसे इलाज करें? तो कहते हैं देवताओं को जाके पूजो, ऐसा अपने सखाओं को बोल रहे हैं। हाँ बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जाओ और देवताओं को, अच्छे देवताओं को चुनो जो पावरफुल है, और उनकी जाके पूजा करो और उनको बोलो कि ये मेरी बहू बन जाए, मेरे पिता की क्या कहते हैं उसको, डॉटर इन लॉ बन जाए। तो कहते हैं कि आप एक काम करो, पावन सरोवर जाओ और वहां पर गिरिराज का पूजन करो पावन सरोवर के जल से, तो फिर तुम्हारी मन की बात पूरी हो जाएगी। फिर और एक सखा बोलता है कि मैंने ये जान लिया है, मैं जानता हूँ इस बात को कि तुम्हारी मैया संकेत देवी के पास आकर पहले से ही ये तुम्हारी बहू बन जाए इसलिए प्रार्थना कर रही है, ऐसे मैया बोल रही है। समझ में आपको आया? यशोदा माता जो है वो संकेत देवी में ऑलरेडी आके पूजा कर रही है रोज कि ये जो वृषभानु की बेटी है राधा रानी, ये मेरे बेटे की बहू बन जाए। तो ये सखा उनको बता रहे हैं। तो ये उसकी क्या कथा है? कथा उसकी ऐसी है कि दोनों गर्भवती थी, कौन, कीर्ति मैया और यशोदा मैया, दोनों गर्भवती थी, यमुना किनारे एक बार बैठी दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं, नंद बाबा और विश्वानु बाबा भी अच्छे मित्र हैं। तो ये दोनों सहेलियां गर्भवती अवस्था में यमुना किनारे बैठी है और क्या बोल रही है, देख यशोदा तुझे लड़का हुआ ना, मुझे लड़की हुई तो उसकी सगाई कर देंगे हम, और अगर तुझे लड़की हुई मुझे लड़का हुआ तो भी सगाई कर देंगे, ये हमारा वादा रहा। तो एक दिन यशोदा संकेत देवी में आ रही है पूजा करने के लिए, दूर से राधा रानी को देखती है यशोदा माई और कहते हैं कि आज संकेत देवी ने पूजा करने के पहले ही फल दे दिया, जो पूजा करके प्राप्त होना था वो पूजा करने के पहले ही आपका दर्शन दे दिया। तो कहती है जाओ तुम घर पे कहो, और बहुत गले लगाए प्रेम से, उसको आंसू बहाए आंखों में से। और यशोदा मैया ने कहा जाओ अपनी मैया से कहो कि आपका वादा आपको याद है ना, यशोदा ने आपको दंडवत भेजा है और कहा है कि वादा जो किया था उसको भूलना नहीं। तो राधा रानी घर जाती है, वो मैया को बोलती है आज कन्हैया की माँ मुझे मिलने आई थी, उन्होंने कहा कि पूजा किए बिना फल प्राप्त हो गया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या बोल रही है वो, लेकिन जैसा बोला वैसे बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि आज संकेत देवी की पूजा किए बिना मुझे फल मिल गया और आपको दंडवत कहने को बोला है और याद दिलाने को बोला है कि जो वादा किया है वो पूरा करना। वो क्या है वादा, ऐसे मम्मी को पूछ रही है। तो बोलते वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो हमारे बीच का वादा है, हम पूरा करेंगे उसको। तो ये गौचारण के समय पे हुआ है, पहले दिन वहां पर वो चले गए। एनीवेज उसकी बहुत लंबी कहानी है, पहले दिन तो बहुत दूर चले गए है ना गाय लेके, और थक गए कन्हैया जी, थक गए क्योंकि उनको तो पास में जाने की आदत है, जब देर होने लगे थकने लगे। अभी ग्वाल बाल क्या सोच रहे हैं, अगर थका हुआ कन्हैया का चेहरा अगर माँ देखती है तो कहेगी कल नहीं जाना है, है ना, नेचुरल है ना, कान्हा इतना थक गया बीमार हो जाएगा बेचारा। तो इसलिए क्या करते हैं, आने के रास्ते पे सब लोग जोक्स बोलते हैं उनको, विनोद कहते हैं, गीत गाते हैं, उसको हंसाते हैं नचाते हैं, ताकि हंसता हुआ चेहरा मैया को दिखना चाहिए लौटते समय, तो कहेगी हमारा कन्हैया बहुत खुश था तो कल भी भेजूंगी। तो इसलिए वापसी में यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, ये इस जगह का नाम क्या है, टेर कदम्ब, कदम का पेड़ यहाँ पर है बहुत ऊंचा, और टेर यानी पुकारना। तो भगवान सब गायों को लेकर लौट के आते हैं और इस पेड़ के ऊपर की शाखा में बैठ जाते हैं और मुरली बजाते हैं, और मुरली बजाते हैं तो हर एक गाय को अपना नाम सुनाई पड़ता है, सब गायों को मुरली की तान से बुलाते हैं और फिर यहाँ से इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं। ऐसे गोपाष्टमी की लीला है, गोपाष्टमी के दिन भगवान को बड़ी गायों का जिम्मेदारी सौंप दिया गया था। और हमारे सब ग्वाल बाल अभी सो रहे हैं इसलिए हम कथा समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जिनके सामने बैठे हैं उनकी कथा तो बोलना ही चाहिए आपको। ये टेर कदम है जहां पर भगवान ने रोज शाम को आकर अपने गायों को बुलाया, मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले, मुरली की तान सुनाने को कब आओगे शाम कदम के तले। तो यहां पर मुरली बजाते हैं भगवान। तो ये स्थान इतना रमणीक स्थान है कि हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रूप गोस्वामी महाराज, रूपम अंजलि के अवतार है वो, भगवान के जो राधा रानी की प्रथम सखी है ललिता देवी, उस सखी की जो सखी है उसका नाम है रूपम अंजलि, प्रधान सखी है वो रूपम अंजलि, वो रूपम अंजलि रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई और इन्होंने यहाँ पर आके भजन किया है। और इसमें बैठकर, इस जगह बैठकर उन्होंने अपने सारे ग्रंथ लिखे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे उच्च उच्च कोटि के ग्रंथ जो है वो यहाँ पर इस स्थान पे लिखे गए, क्योंकि बहुत ही रमणीक शांत और भजन योग्य स्थली है ये। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया है और लेखन भी किया है अपने चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार। तो यहाँ पर एक दिन उनके भाई सनातन गोस्वामी, जिनका मैंने आपको कल बताया था कथा मदन मोहन जी के संबंध में, तो एक दिन उनके बड़े भाई सनातन जी का जन्मदिन था, तो इनके मन में आया कि जन्मदिन मनाना चाहिए भैया का। तो बोला क्या करना चाहिए, बोले खीर बनाना चाहिए। तो खीर के लिए भी चावल चाहिए, दूध चाहिए, मीठा चाहिए, हाँ मेवा चाहिए, तो इतना सब जुगाड़ कौन करेगा, हम तो भजन में बिजी है। तो भूल जाते हैं उस बात को, इच्छा तो करते भूल जाते। कुछ देर बाद एक कन्या आती है, दिखाई पड़ रही है कन्या, एक कन्या आती है और टोकरी में चावल दूध मेवा मीठा सब लेके आती है और बाबा को बोलती है, बाबा ये मेरी मैया ने भेजा है, आप उसको ले लो। तो क्या है इसके अंदर, बोले खीर का साधन है, सब खीर का सामान है। तो कहते मैं व्यस्त हूँ भजन में, तू ही बना देना उसको, आप ही बना देना उसको। तो वो कन्या जो है अपने हाथ से खीर बनाती है, भगवान को भोग लगाती है। कहते बाबा हो गया, खीर बन गई है, भोग लगा के रखा है, आप ले लो उसको। उतने में सनातन जी आ जाते हैं, तो उनको दिव्य गंध आती है उसकी, तो कह रहे क्या बन रहा है, बोला खीर बनी हुई है, आपका जन्मदिन है तो आपके लिए खीर बनी हुई है। तो वो उनको खीर देते हैं, ध्यान से सुनो, तो खीर देती है तो सनातन जी खाने लगते हैं उसको। जिस खाने लगते हैं तो उनको रोमांच होते हैं, अंग शरीर में आंखों से अश्रु आते हैं, प्रेम के अश्रु आते हैं और गदगद हो जाते हैं वो। तो बोले रूप जी ये कहाँ से लाया तुमने खीर आज, बताओ इसका उगम बताओ कहाँ से आया ये, मुझे इतना दिव्य स्वाद आ रहा है कि मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, शरीर में रोमांच खड़ा हो रहा है, इतना दिव्य आनंद की अनुभूति हो रही है, बताओ कहाँ से आया। तो कहते एक लड़की आई थी, टोकरी में डालकर सामान लेके आई है, उसने अपने हाथ से बनाया। तो सनातन जी बोलते हैं उसका वर्णन करो कैसी थी वो। तो उसका वर्णन करते, वो नीला घाघरा पहना था, गुलाबी चोली पहनी थी, पूरा वर्णन करते उसका। अरे वो कहते हैं सनातन, कहते हैं अरे रूप ये तो राधा रानी स्वयं थी, आपने आज राधा रानी के हाथ से सेवा लिया है, कैसे भक्त हो तुम, राधा रानी के हाथ से सेवा लेते हो, यहाँ पर रहकर हमको राधा रानी की सेवा करना है, उसके लिए हम लोग आए हैं और उनसे ही सेवा ले रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं, डांट रहे हैं कि कैसे तुम खीर खा सकते हो, ये खीर कैसे खा सकते हो, तुमने सेवा ले रहे और खुद खाते जा रहे। वो अनुभव जो है वो उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मुंह से बोल रहे हैं शास्त्र बात बोल रहे हैं और शरीर से वो कर रहे हैं जो उनके बस में नहीं है। दोनों खाते जाते हैं, दोनों के आंखों से अश्रु बहते हैं। यहाँ पर स्वयं राधा रानी ने आकर अपने भक्त का सेवा किया है, क्योंकि भगवान की सेवा हम सब लोग करते हैं और भगवान स्वयं राधा रानी की सेवा करते हैं और राधा रानी सब भक्तों की सेवा करती है। बोलो, रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार राधा कुंड पे धूप में भजन कर रहे थे, जल राधा चमड़ी, राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई और अपना पल्लू उन पर छाया के लिए रखा उन्होंने ऐसा, और खुद उनके आंखों सर पे पसीना आ रहा था राधा रानी के, और भक्त को उसकी त्वचा जल न जाए इसलिए अपना पल्लू देके छाया दे रही है। तो सनातन जी डांटते हैं उसको, अरे रघुनाथ तो कैसा भक्त है, जिनका नाम पुकार के भजन कर रहा है उन्हीं की सेवा ले रहा है। तो फिर रघुनाथ जी ने उसके बाद अपना कुटी बनाया, कितने विरक्त संत थे वो। लेकिन ये जब घटना हुई, सनातन जी ने दर्शन किया कि राधा रानी पल्लू पकड़ के अपने भक्त को छाया दे रही है और ये अपने ध्यान में मस्त है, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। उसके बाद कुटी बनाई रघुनाथ दास जी ने। तो राधा रानी कितनी लालायित है अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। तो राधा रानी भक्तों की सेवा करने लालायित है तो हमको कितना होना चाहिए भक्तों की सेवा करना। राधा रानी स्वयं अपने उदाहरण से बता रही है कि भक्त की सेवा कैसे करनी चाहिए। अपनी सर्वोच्च पद को त्याग कर अपने भक्तों की सेवा कर रही है वो। हाँ, खीर बना दिया उनके लिए। तो ये स्थान है, यहाँ पर वो दिव्य खीर राधा रानी ने अपने हाथ से बनाकर सनातन जी और रूप गोस्वामी को खिलाने के लिए प्रस्तुत की। बड़ा दिव्य स्थान है ये, कृष्ण बलराम का लीला स्थल ये है। यहाँ कृष्ण बलराम लीला करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं, कुंड में लीला करते हैं, गौचारण करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, खेल भूमि है। यहाँ का जो वातावरण है, आप जो रुपया खरीदी करके भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। इतना दिव्य वातावरण यहाँ पर भगवान की लीला से संपन्न है। तो आप लोगों को बधाई है, आप नंदगांव आए और भगवान की लीला का श्रवण किया, भगवान का दर्शन किया। नंदगांव में भगवान की लीला श्रवण करना यह बहुत बड़ी पुण्य की बात है। यहाँ आनंद ही आनंद है, नंदगांव से आनंद और कहीं नहीं है ऐसा बताते हैं। सब खेल खेल में। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। यज्ञ का फल तो टेम्पररी होता है, वो तो कैसा होता है ना, समझा आपको कुछ समझाया जाए कि भाई कैसा है, तो आप बोलेंगे यहाँ 10,000 रुपये के बराबर है ये। मतलब आपका करेंसी रुपया है तो आपकी भाषा में समझाएंगे कि ये 10,000 रुपये का इतना कीमत उसका हो सकता है। वैसे ही अश्वमेध यज्ञ वगैरह क्यों बताते हैं, क्यों आपको समझ में आ जाए कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे राधा रानी को, राधा रानी का श्रृंगार एक बार कृष्ण भगवान ने किया और राधा रानी ने पूछा कि हो गया श्रृंगार, तो उन्होंने कहा हो गया। अभी राधा रानी कहती है अभी मेरे श्रृंगार का वर्णन करो आप, ग्लोरीफाई। हाँ, तो कृष्ण को शब्द प्राप्त नहीं हो रहे और कृष्ण को उपमा प्राप्त नहीं हो रही है कि किससे तुलना करें भाई, क्या बताएं कि भाई लाल रंग किसके जैसा है, स्वर्ण रंग किसके जैसा है। क्योंकि शास्त्र में वर्णन आता है, इसी यात्रा में मैंने सुना था कि राधा रानी और कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करने के लिए तुलनात्मक दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो। आप बोलेंगे पीला रंग मतलब चंपा के फूल जैसा, लेकिन चंपा का फूल का जो पीलापन है वो राधा रानी के कांति से तुलना नहीं हो सकती उसकी। लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए वो बोला गया है कि आप चंपा के फूल को जानते हो ना, इसलिए आपको बताया गया कि चंपा के फूल जैसा रंग है उसका, साफे कड़ी। हाँ, वैसे उसके नाक है ऐसे बताते हैं, लेकिन जो नाक का सौंदर्य राधा रानी का है वो चाफे कली का तुलना नहीं कर सकते उसके साथ। तो कृष्ण भगवान विचार में पड़ गए, अभी मैं इनका चेहरा इतना सौंदर्यवंत चेहरा है, मैं किसको बताऊं, सब जगह ढूंढते हैं कोई वस्तु नहीं मिलती उसके योग्य। तो क्या करते हैं, आकाश में देखते हैं, तो आकाश में चंद्रमा को देखते हैं, बोलते हाँ ये खूबसूरत चीज है। तो कहते हैं आपका चेहरा जो है चंद्रमा जैसा है, तो आपका उम्मीद क्या है कि राधा रानी को खुशी होनी चाहिए कि चंद्रमा से मेरी तुलना की गई। लेकिन बगैर खुशी के उसको गुस्सा आ जाता है, बोलते भाई चंद्रमा से तुलना करते हो, चंद्रमा पे दाग है, हमारे सौंदर्य में दाग नहीं है, कैसे आप तुलना कर सकते हो, हमारा दाग रहित सौंदर्य है, कोई उसमें दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। दूसरी बात, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारा सौंदर्य कभी भी ग्रहण लगता नहीं है। चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घट जाता है, उसका क्षय होता है, हमारा सौंदर्य क्षय तो होता ही नहीं। सौंदर्य हमारा सौंदर्य हर समय हर क्षण में बढ़ते रहता है, ऐसे करके मान करके रोट के बैठ जाती है। तो ये बात कहाँ से निकली कि भगवान के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते हम किसी चीज़ से, राधा रानी के सौंदर्य की तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पूछा ना प्रश्न अश्वमेध यज्ञ का लाभ, तो वो आपको हमको समझ में आ जाए, हमारे दिमाग में फिट हो जाए, इसलिए हमारे दिमाग वाला एग्जाम्पल लेते हैं उसको। लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना, वृंदावन में निवास करना, रात को वृंदावन में भगवान का नाम लेना, वृंदावन में भोजन करना, वृंदावन में दूध पीना, इस भाग्य का तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भागवत में ये सब बताया गया है कि ये कथा सुनने के बाद में आपको ये लाभ मिलेगा, यही सुनने के बाद ये लाभ मिलेगा। क्यों बताया है? क्योंकि हम जैसे लोग जिनको रुचि नहीं है भगवान के अंदर, उनको इसके वजह से कम रुचि पैदा हो जाए, है ना। आपको बोलेंगे 1 करोड़ रुपये मिलेगा, चलो 1 करोड़ के लालच से तो आएंगे सुनने के लिए, समझो। बोलेंगे कि कथा सुनेंगे ना आप, तो आपको 1 करोड़ सबको दिया जाएगा। तो आप लोगों को नींद आ रही है, इंटरेस्ट नहीं है, भूख लग रही है, धूप लग रही है, सब लग रहा है, लेकिन 1 करोड़ के ललच से आएंगे ना सुनने के लिए। उसीलिए भागवतकार जो हैं वो भागवत की कथा के बाद हर बार बताते हैं फलश्रुति, मतलब इसके सुनने के बाद में क्या इस श्रुति का क्या लाभ होगा, फल क्या मिलेगा। तो हर कथा के बाद कुछ कुछ बताया जाता है। तो आचार्य बताते हैं कि वो शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, उन भक्तों के लिए है जो भक्ति में उनको रुचि नहीं है, अभी नए नए हैं, बटे हुए हैं, यहाँ भी हैं उधर भी हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भागवतकार जो हैं कथाकार वो बताते हैं उनको, ताकि वो कम से कम वो लाभ के हेतु से कम सुनेंगे तो उनका हृदय पवित्र हो जाएगा। वैसा है ये। तो रात को यहाँ पर सोने से अश्वमेध करने का लाभ होता है। तो आप लोग रात को निवास करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको कहना है कि मैं शाम को ट्रेन पकड़ के जाना है, तो हम बोलेंगे नहीं, आपको अश्वमेध का लाभ मिलेगा। तो फिर आप बोलेंगे चलो रात का रहते हैं, रूम बुक करके कल सुबह जाते हैं। भगवान भी अपना प्रेम देने के लिए थोड़ा सा प्रलोभन दिखाते हैं भक्तों को। वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाएं प्रेम से, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ आ जाओ मेरे धाम में आ जाओ। क्यों तड़प रहे हो दुनिया में, क्यों दुख भोग रहे हो, क्यों तड़प रहे हो इसके पीछे, धन के पीछे, लालसा के पीछे, मेरे पास आ जाओ। लेकिन फिर भी हम नहीं आते हैं तो बोलते हैं ये लो, ये बेनिफिट लो, ये बेनिफिट लो। अरे वो गजेंद्र मोक्ष कथा है ना भागवत में, 8वें स्कंद में आती है कथा, उसके एंड में लिखा है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने वाला व्यक्ति उसको रात को बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। समझो आप बुरे सपने के बीमार हो, समझो आपको हर रोज सपने आते हैं बुरे बुरे, और आपको नींद नहीं पूरी होती आपकी, और आप रात को परेशान रहते हो, तो आप लोग आओगे ना सुनने के लिए? क्योंकि नींद नहीं मिलने से और बुरे सपने से इतने परेशान हैं आप, है तो कुछ नहीं लेकिन सपने से आपको लगता है कि सच है, शेर खा रहा है आपको या और कोई गिदर खा रहा है, तो आपकी नींद खराब हो रही है, रात को आप कांप रहे हो, दिन में हंसते हो क्या किधर किधर था, लेकिन रात में आपको सच लगता है वो, तो परेशान है वो बेचारा नींद के ना होने से। तो वो आदमी को पता चलेगा कि गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने के बाद में बुरे सपने आने बंद हो जाते हैं, अच्छी नींद आती है, तो वो गजेंद्र मोक्ष कथा सुनने आएगा। क्योंकि उसको परेशानी है। तो भगवान हर चीज का लाभ उठाना चाहते हैं कि भाई तुझे परेशानी आ जा, मैं आपको लाभ देता हूं। भगवान हर चीज से, हर परे प्रकार से जीव को उनकी ओर ले जाने का प्रयास करते रहते हैं, ताकि जीव यहाँ के दुख से मुक्त होकर उनके चरणों में आनंद का अनुभव करे। इसलिए वो सब लीला करते रहते हैं। इधर क्यों आते हैं, उनको क्या जरूरत है आने की, उनके धाम में कुछ कमी है क्या? लेकिन फिर भी वहां का एक हिस्सा यहाँ पे आके इस्टेब्लिश करते हैं, या सबको लेके आते हैं, जमुना जी को लेके आते हैं, गोवर्धन को लेके आते हैं, और लीला करते हैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि हम लोग देखेंगे तो हाँ भाई ये तो हमने मिस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ तो रुको दम नहीं है, इसमें बड़ा आनंद है, तो हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए वो यहाँ पर आकर वो ड्रामा कर रहे हैं सब लीला का, ताकि हम लोगों का मन मोहित हो जाए और भगवान से हम आकर्षित हो जाए। नहीं तो भगवान को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के धाम में हमसे अच्छे अच्छे भक्त वहाँ रहते हैं, उनको बड़ा रिझाते रहते हैं, वो बड़ा प्रेम से देखभाल करते हैं उनकी, एक भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे आने की, ना आपके केले की ज़रूरत है, ना आपके चावल की ज़रूरत है उनको, लेकिन हमको ज़रूरत है उनको देने की। इसलिए वो आते हैं, लेने के लिए आते हैं, मूर्ति के रूप में आते हैं, विग्रह के रूप में आते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए। लेकिन हम क्या क्या देंगे उनको, हमारे पास ना अच्छा पानी है, ना अच्छा चावल है, ना अच्छा केला है, सब भेसल, क्या बोलते हैं उसको, खाद डाल के पूरा कंटेमिनेटेड हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन वो भी वो लेते हैं हमारे से प्रेम से देने के बाद में। यही भक्ति है। भगवान को ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है, यही अंडरस्टैंडिंग भक्ति का होता है। वो तो वैकुंठपति है, उनके पास क्या कमी है, लेकिन प्रेम के लिए भूखे हैं, प्रेम को लेने के लिए आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।